ओम शांति। आपका सत्र है जीवन जीने के लिए गीता का मार्गदर्शन। आपके सन्मुख बैठी है उषा दीदी। कभी कभी दिल होती है आसमान को छू लेने की, कभी कभी दिल होती है समुन्दर की गहराई में जाने की, पर दीदी जी आपने तो गीता ज्ञान की गहराई में चले गए और सबको भी ले जाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। इस गीता ज्ञान के ऊपर आपकी इतने रिसर्च हुए हैं, आपने बहुत सुंदर रिसर्च करके इस गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब जगह जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मैं समझती हूँ 100 से भी अधिक प्रोग्राम आप किए हुए हैं और आज यहाँ पर इस गीता के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से समझाने देंगे। तो आपके सम्मुख उषा दीदी गीता के ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं जीवन जीने की कला मार्गदर्शन गीता ज्ञान के द्वारा। तो हमारी बहन आपको वेलकम कर रहे हैं इस सत्र में। शांति।
ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भारत का सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ग्रंथ है सारे विश्व के अंदर जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, या जिसको कहे कि ये भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। दुनिया भर के बाकी सभी धर्म शास्त्र में कहीं पर भी भगवान वाच नहीं आता है, महान आत्माओं के सुवाक्य होते हैं। दूसरा के श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने सत धर्म की स्थापना की थी, अधर्म का विनाश किया था। जब ही बाकी धर्म ग्रंथ से कोई सत धर्म की स्थापना हो ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा उसमें ऐसे अमृत वचन है कि जिससे मनुष्य को जीवन जीने की कला मिलती है, मार्ग प्रदर्शन होता है उसका। तीसरा श्रीमद् भगवद गीता को मां की उपमा दी गई है, गीता माता कहा जाता है, इसलिए उनको मां की उपमा दी गई कि जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, इसीलिए उसको मां की उपमा दी गई। इतना श्रेष्ठ है कि जिसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है, अलग अलग वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन सभी वेदों का सार जिसमें समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। धर्म ग्रंथ से ज्यादा इसको कर्म ग्रंथ कहा जाता है कि जो श्रेष्ठ कर्म करने की एक दिशा हमें प्रदान करती है। मनुष्य जब भी अपने जीवन के अंदर कोई उलझन में फंस जाता है तो उसे श्रेष्ठ दिशा प्राप्त होती है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से। इसीलिए दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हो गए उन्होंने गीता को अपने जीवन का आधार बना दिया, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, या महात्मा गांधी हो, या दुनिया भर में भी जिन्होंने भी अपने कोई भी क्षेत्र के अंदर शिखर को प्राप्त किया है तो उसका आधार कहीं न कहीं श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा प्राप्त की है। तो महानता का आधार श्रीमद् भगवद गीता रही है। इसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है कि जिसके कारण भगवद गीता अतुलनीय हो जाती है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणी पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये भगवद गीता हम तक कैसे पहुंची? हम सभी बहुत अच्छी तरह से ये बात समझते हैं, जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इतना दिव्य ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब ध्यान अवस्था में बैठते थे, समाधि अवस्था में बैठते थे, तो उस वक्त वो ध्यान में मग्न हो जाते थे और उस समय उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसे ही ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें महसूस हुआ कि ये इतना ऊंचा ज्ञान है कि मुझे उसको लिपिबद्ध कर देना चाहिए। परंतु जब ध्यान से नीचे आए और उसको लिखने का प्रयास करने लगे तो कई बातें वो भूल गए, लुप्त तो हो गई, तो वो लिख नहीं पाए। तब कहा जाता कि दूसरे दिन उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो मनुष्य तक पहुंचाऊंगा कैसे? तो कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए। तब भगवान ने उन्हें इशारा किया गणेश जी की ओर कि आप गणेश जी का आवाहन करिए। और तब महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी को निवेदन करते हैं अपना लेखक बनने के लिए। और ये बात महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कही गई है। बहुत सुंदर तरीके से वो गणेश जी का आवाहन करते हैं और कहते हैं, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत गहरी बात यहां कही हुई है कि ज्ञान उन्हें समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु जो ज्ञान को प्रेजेंट किया वो उनकी अपनी ही मन की कल्पना का विस्तार था। भावार्थ ये है कि आज मान लो कि मुझे कोई बच्चे को एक मॉरल की बात सुनानी हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये ज्ञान है, प्योर नॉलेज, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। परंतु अगर मैं सीधा उपदेश दूं तो वह बच्चे के ग्रहण शक्ति शायद उसके मर्म को समझ नहीं पाती। लेकिन उसी ज्ञान की बात को अगर मैं अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करके कहती, जिसमें एक सच का पात्र लूं, एक झूठ का पात्र लूं, और सच का महत्व बताते हुए कि सच के प्रयोग से कैसे व्यक्ति की विजयी होती है और झूठ के प्रयोग से कैसे व्यक्ति जीवन में हारता है, उसका आत्मविश्वास खत्म होता है आदि आदि, तो शायद वो बच्चे के दिमाग में वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और उसमें से वो प्रेरणा प्राप्त करेगा कि मैं भी सच बोलने का प्रयास करूं और प्रयोग भी करेगा, इम्प्लीमेंट भी करेगा। लेकिन अगर मैंने सीधा उपदेश दिया तो शायद उसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसके महत्व को समझता नहीं है। ठीक इसी तरह महर्षि वेदव्यास जी भी यही बात शायद कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ वो इतना ऊंचा ज्ञान था कि अगर उसको सीधा रख देते थे तो आज की दुनिया के मनुष्य की समझ से ऊपर चला जाता था। इसलिए उन्होंने अपनी मन की कल्पना के आधार से एक कथा का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। और उस कथा के माध्यम से उस ज्ञान के मर्म को समझाने का प्रयास किया, ताकि मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करे और प्रयोग में लाए और उस जीवन को जी सके और उस जीवन का आनंद अनुभव कर सके। लेकिन ये बात कहीं पर भी बताई गई नहीं, हाईलाइट नहीं किया गया है, जबकि ये महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में बहुत स्पष्ट महर्षि वेदव्यास जी ने एडमिट किया है। दूसरी बात कि उन्होंने गणेश जी का आवाहन क्यों किया? क्या उस समय में कोई और ऋषि मुनि नहीं थे जो उनकी ये बात लिख सकते थे? और ऋषि मुनि भी होंगे और किसी को भी लेखक बना सकते थे। गणेश जी का आवाहन क्यों किया गया? क्योंकि गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि के देवता। जो ज्ञान उन्हें इतनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में प्राप्त हुआ उसकी कोई बात वो मिस करना नहीं चाहते थे कि मनुष्य तक पहुंचाने में कुछ भी मिस होना चाहिए। और मनुष्य तो गलती कर सकता है, या कोई ऋषि मुनि को भी अगर बिठाते थे तो भी शायद उनके समझने के लेवल में अंतर पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया कि जो बुद्धि के देवता है वो अगर इस बात को लिखेंगे तो 1% भी मार्जिन नहीं होगा कोई भी ज्ञान की बात को मिस करने में। कहा जाता है कि जब गणेश जी आए तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि समाधि अवस्था में कही गई बातों को आप ऐसे ही ना लिख देना, मेरी हर बात को समझकर लिखना। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया और कहा जाता है कि जब पहला ही श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके बताओ, तो पहले ही श्लोक में गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा इस बात को समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। या ये कहते थे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा। तो ये बात को समझने के लिए बुद्धि के देवता गणेश जी को भी रुकना पड़ा। और ऐसे कई श्लोक थे जिसके लिए गणेश जी अपनी शर्त भूल गए और रुक जाते थे उस बात को समझने के लिए। माना इतनी डीप सीक्रेट्स गीता के अंदर समाई हुई है जो जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर बुद्धि के देवता गणेश जी को भी रुकना पड़े तो आज का मनुष्य उस उच्च ज्ञान को, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में दिया गया ज्ञान है, उसको कितना समझ पाएंगे, सोचने की बात है। समाधि अवस्था माना कितनी ऊंची कॉन्शियसनेस, लिखने के लिए बुद्धि के देवता गणेश जी जैसे गणनायक जी को आवाहन किया गया, उसको भी रुकना पड़े, कितनी ऊंची कॉन्शियसनेस उसकी भी। वो आज का मनुष्य जो ग्रॉस लेवल पर है वो उस ऊंची बात को कितना समझ पाएगा। और इसलिए शायद आज की दुनिया के अंदर गीता के ऊपर टीकाएं भी लिखी गई है, क्योंकि जिन्होंने उसकी गहराई को समझा नहीं वो टीकाएं भी लिखने लगे हैं। इसलिए गीता के ऊपर क्रिटिसिज्म्स भी मिलती है, नहीं तो इतना ऊंचा ज्ञान कितना सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। श्रीमद् भगवद् गीता को इसलिए महान माना गया है क्योंकि उसमें सभी स्तरों का समाधान प्राप्त है। एक मनुष्य की मनोदशा का समाधान है, क्योंकि एक अर्जुन की मनोदशा की बात नहीं है, लेकिन आज अर्जुन जैसी स्थिति कई लोगों की है, उसकी समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता है। पारिवारिक स्थिति की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता में है, सामाजिक स्थिति की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता है, राष्ट्रीय स्थिति की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता है, और वैश्विक स्थिति का समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता में। यानी जिसको कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल की समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता में उपलब्ध है। इसलिए गीता महान है। कैसे? आज एक मनुष्य की मनस्थिति अर्जुन जैसी है, अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना निराश, उदास, हताश हो गया कि उसने शस्त्र छोड़ दिए, कहने लगे मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन में भी अनेक चैलेंजेस है, इतनी चुनौतियों से उसको गुजरना पड़ता है कि जीवन कभी कभी एक संघर्ष युद्ध का मैदान बन जाता है। और ऐसे समय में कई संघर्षों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आ जाते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है। और उस समय वो भी भीतर से टूटने लगता है, हारने लगता है। इसलिए कहा, जब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है, जब उसे जीवन असार लगने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटने लगता, मूल्य बिखरने लगते हैं, धैर्य टूटने लगता है, दया खत्म हो जाती है, सबकी हदें टूट जाती है। कुछ लोग तो इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं और जीवन को सफल बना देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। इसलिए कहा, यह जीवन एक ऐसा संघर्ष है कि कई बार तो हम जीत जाते हैं, लेकिन कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब हम उदास, निराश, हताश हो जाते हैं, अर्जुन की तरह डिप्रेशन के शिकार भी बन जाते हैं। ऐसे समय के लिए ही गीता का ज्ञान जरूरी है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा कि चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, हर एक व्यक्ति के लिए चुनौती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है और किसी किसी के लिए यही चुनौती एक सेटबैक देती है या पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय ले लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं, और चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय ले लेता है उसको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। और गलत निर्णय क्यों लेता है व्यक्ति? क्योंकि माइंड स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ सूझता नहीं है, इसीलिए गलत निर्णय ले लेता है, फोकस क्लियर नहीं है। ऐसी चुनौतियों का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। दूसरा कहा जाता है कि कुटुंब परिवार के अंदर आज झगड़े किस पर होते हैं? भाई भाई के बीच में झगड़े किस पर होते हैं? जमीन और जायदाद को लेकर के ही तो झगड़े होते हैं। तो कुरु परिवार में भी पांडव और कौरव दो थे और झगड़ा था तो जमीन और जायदाद के कारण ही झगड़ा था कि पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं। कहने का भावार्थ ये है कि वो उन्हें अपने दिल में स्थान देना नहीं चाहता था, न उसे सुख से रहने देना चाहता था, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं। तो परिवार के अंदर संघर्ष चलने लगा। अगर एक परिवार के लिए भगवान इस संसार में आता हो तो आज की दुनिया में तो घर घर की ये कहानी है। तो भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, एक ही कथा के अंदर अर्जुन की मनस्थिति, पारिवारिक स्थिति का समस्या का समाधान दिया हुआ है। सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बहुत है। महाभारत में तो एक ही शकुनी का वर्णन आता है, लेकिन आज की दुनिया में कितने शकुनी होंगे? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है, समस्याओं को खड़ी कर रहा है। तो ऐसी सामाजिक स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है और उस समय समाज भी अंधा, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते, तभी पांडवों के साथ अन्याय होता है, सही मार्ग पर चलने वालों के साथ अन्याय होता है। ऐसी सामाजिक स्थिति की समस्या जब उत्पन्न होती, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्थिति, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखते हैं। एक एक नाम का जो चयन किया है वर्तमान समय के अंदर, वैसे कैरेक्टर्स के लोग हैं। धृतराष्ट्र के, जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठती है, महाभारत के समय भी तो कुर्सी का ही खेल था, और आज हर राष्ट्र के अंदर भी खेल किस बात का है, कुर्सी का ही खेल है। और उस कुर्सी के खेल के कारण ही, और उसमें भी जब धृत भावना हड़प कर बैठे, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। हर राष्ट्र की आज दुनिया भर में यही स्थिति हो गई है। इसीलिए महात्मा गांधी भी जब उलझ जाते थे कोई समस्या को लेकर के, तो उनके शब्द में कि जब भी मैं अपने जीवन में कोई उलझन महसूस करता हूँ राष्ट्रीय स्थिति को देख करके, तो गीता को पढ़ना आरंभ कर देता हूँ, कोई भी पन्ना खोल करके पढ़ना आरंभ कर देता हूँ, और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो वो महान हो गए। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही एक उसूल जीवन में अपनाया है कि चाहे विदेश में या देश में कोई भी महान हस्तियों से मिलते तो गीता को ही भेंट करते हैं, गीता की भेंट, ताकि उसके वचनों का सम्मान करते हुए उसमें से व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करे। कई समस्याएं सुलझने लगती है। और इसी तरह एक वैश्विक स्थिति कि आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं, उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। यानी जिसको कहा जाए एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता है। मनुष्य का मन जब विचलित हो जाता है तब अधर्म की ओर वो आगे बढ़ जाता है, और तभी अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए विश्व के अंदर परमात्मा को भी आकर के योग युक्त बनाना पड़ता है उसके मन को। आगे देखते हैं महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार। कितनी सुंदर एक दृश्य हमारे सामने आता है कुरु परिवार का। कुरु परिवार में कौरव और पांडव दो है। कुरु माना करो, कर्म करो। पांडव माना जो पवित्र कर्म करने वाले थे, और कौरव माना जो अपवित्र धर्म के कर्म करने वाले थे। पांडव माना जो भगवान से प्रीत रखना जानते थे, प्रीत बुद्धि थे, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि थे। तो कहा जाता है इस दृश्य के अंदर आप देखेंगे कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन, दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि दुर्योधन सरहाने पर बैठता है और अर्जुन पैरों के पास हाथ जोड़ करके खड़ा है। और उसके बाद भगवान ने जैसे ही दोनों को कहा, दोनों मदद मांगने के लिए आए ये जाना उन्होंने, तो भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए। दुर्योधन को शकुनी ने सिखा के भेजा था कि तुम कुछ भी और नहीं मांगना, उसी को मांग लेना, क्योंकि जिस तरफ ये होगा विजय उसकी होगी, सिखा के भेजा था। लेकिन भगवान ने एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी बन करके रथ चलाऊंगा। तब दुर्योधन ने सोचा भगवान को मांग के फायदा ही क्या, अगर उसको शस्त्र उठाना ही नहीं है, युद्ध करना ही नहीं है, तो मांग के फायदा ही नहीं है। तब उसने कहा मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए, कहने का भावार्थ। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहने का भावार्थ इस दृश्य के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी हमें ये जीवन में सिखाना चाहते हैं कि दुर्योधन क्यों नहीं पहचान सका, क्योंकि सिरहाने बैठा था। सिरहाने माना अहंकार का प्रतीक। परमात्मा की शक्ति को पहचानने के लिए जो अभिमान में रहता है वो कभी भी भगवान की शक्ति को पहचान नहीं सकता है। जीवन के संघर्ष में ईश्वर का साथ अगर चाहते हो, उसका सानिध्य अगर चाहते हो, तो नम्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति नम्र होता है वो परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह से पहचान सकता कि अगर भगवान युद्ध न भी करे, शस्त्र न भी उठाए, सारथी भी बन जाता है, तो भी जिस तरफ भगवान होगा विजय उसी की तरफ होगी, उसकी इतनी जिम्मेवारी है, विजय दिला करके ही रहता है, ये भगवान की जिम्मेवारी है। लेकिन जो भगवान की शक्ति पर डाउट करता है कि भाई रथ चलाने का मतलब खाली रथ ही चलाएगा, वो जिम्मेवारी नहीं उठाएगा, यही तो क्या कहेंगे, बेसमझ की निशानी है। अरे भगवान को साथ लेकर चलो जीवन के अंदर, प्रीत बुद्धि बन करके चलो, तो भगवान जिम्मेवारी उठा लेता है विजय दिलाने की, सफलता दिलाने की जीवन के अंदर। कितना सुंदर दृश्य उन्होंने इस महाभारत की कथा के माध्यम से हम सभी आत्माओं को सिखाना चाहा कि प्रीत बुद्धि बनो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसलिए भगवान को सारथी बना लो, सारथी, और जो सारथी बना लेता है विजय उसकी निश्चित है। और आगे देखें महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार में कि पांडव और कौरव, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, परसेंटेज कितने पर निकलता है, परसेंटेज 100 पर निकलता है ना। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे, भगवान से प्रीत करने वाले कितने होंगे, ओनली 5% लोग है ना। जिस तरह से याद आता है कि नॉस्ट्रोडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा था और उन्होंने लिखा, लेकिन पोएट्री फॉर्म में लिखा, इसलिए जो लोगों ने पढ़ा कुछ समझ नहीं पाए। घटनाएं हो जाने के बाद बताते हैं नॉस्ट्रोडेमस ने ये बात लिखी थी, घटनाएं हो जाने के बाद, पहले नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पोएट्री लैंग्वेज को समझना कठिन है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी, हमारे ऋषि मुनि इतने सिद्ध थे कि समाधि अवस्था में जब वो ध्यान में बैठे थे तब उन्होंने विश्व का भविष्य देखा कि कलयुग जब आएगा तो कितना कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे कैरेक्टर्स होंगे उनके, और उन्होंने उसी बात का महाभारत की कथा नामक पुस्तक बनाया, अपनी मन की कल्पना का विस्तार। कि पांडव माना 5 थे, कौरव माना 100 थे। हर मनुष्य के अंदर 2 प्रवृत्ति का वास होता है, एक दैवी प्रवृत्ति एक आसुरी प्रवृत्ति। तो पांडव माना जो दैवी प्रवृत्ति वाले धर्म पक्ष के वाचक, उस 5% में भी युधिष्ठिर कितने थे कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मन का संतुलन या स्थिर बुद्धि कितने होंगे आज की दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओनली 1% युधिष्ठिर। दूसरा नंबर था भीम, स्ट्रांग विल पावर। आज की दुनिया में जहां कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा हो वहां स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर था अर्जुन। अर्जुन माना जो अर्जन करना जानता था, भगवान ने जो ज्ञान दिया, हर अच्छी बात को जो जीवन के अंदर अर्जित करता है, धारण करता है, वो आज की दुनिया में कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर था नकुल, जो नियम पर जीवन जीने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। तो आज की दुनिया में नियमों पर जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और पांचवा नंबर था सहदेव। सहदेव माना सहयोग देने वाला, हर अच्छे कार्य में जो अपना सहयोग देता है। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, अपेक्षा रहती है। परंतु सहदेव ने जो सहयोग दिया बिना किसी अपेक्षा के, तो आज बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। तो ये थे 5 पांडव, है ना, ओनली 1%। आप सभी कौन हो जो समझते हम युधिष्ठिर है, स्थिर बुद्धि वाले? जरा हाथ तो खड़ा करें। स्थिर बुद्धि, कैसी भी समस्या आए, परिस्थिति आए, अच्छा थोड़े से जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर, जो सोचा वो कर दिया डिसाइड, अच्छा थोड़े हैं। जो सोचते हम अर्जुन है, अर्जन करना जानते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, अच्छा। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर जीवन जीने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, हा? अच्छा वो भी है। और जो समझते हम सहदेव है, हर अच्छे कार्य में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले, अच्छा वो भी है। लेकिन आज मुझे यहाँ 6 प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया, पता नहीं वो कौन है, हाँ? वो कौन है? कौरव तो बैठ नहीं सकते यहाँ, गीता का ज्ञान कौरव के लिए तो होता नहीं, इसलिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आप सब पांडव हैं, और मुबारक हो आप सब पांडवों को। लेकिन आज जो इस मंच से मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे हर एक अर्जुन नजर आ रहा है जो अर्जन करने के लिए यहाँ आया है, अर्जन करने के लिए यहाँ बैठा है, तो मुबारक हो आप अर्जुनों को। दूसरी ओर कौरव पक्ष माना अधर्म पक्ष के वाचक, धृतराष्ट्र जो राजसत्ता बाहुबल और भूमि के अभिमान से युक्त था, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं महाभारत का अध्ययन कर रही थी तो ये बात पढ़ करके मेरे मन में एक विचार आया, पता नहीं आप लोगों के मन में विचार आया कि नहीं आया। मेरे मन में विचार आया कि अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सहारा बनना चाहिए। विवेक ये कहता है, ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद आंखों पर पट्टी बांध लिया। लेकिन तब महसूस हुआ कि तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार जो है, कि सचमुच आज की दुनिया के अंदर अगर कोई पति गलत काम कर रहा है तो उसकी पत्नी देखते हुए जानते हुए उसको रोकती नहीं, आंखों पर पट्टी बांध लेती है, गांधारी बन जाती है, देखना नहीं चाहती है और अन्याय को साथ देने लगती है। यही तो आज की कलयुग की रीत है। दूसरी ओर मेरे सामने 100 कौरवों की नामों की लिस्ट आई, तो जब मैं नामों की लिस्ट पढ़ रही थी तो अधिकतर नाम दू से आरंभ हो रहे थे, दुर्योधन, दुशासन, दुशह, दुशल, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, दुष्कर्ण, सारे दू से मेजॉरिटी। तो मेरे मन में विचार आया कि कलयुग के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, कभी भी ऐसे विचित्र नाम नहीं रखेंगे। दू से आरंभ होने वाला तो कोई नाम नहीं, खाली एक ही नाम आज की दुनिया के अंदर है दू से, वो है दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। क्योंकि दू माना ही दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानता है। तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे चुन चुन के रखे, दुष्टता वाले? यही तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है कि आज की दुनिया में भले ऐसे नाम ना हो लेकिन ऐसे कैरेक्टर वाले लोग जरूर है। दुर्योधन माना ऐसे बच्चे जो धन का दुरुपयोग करते हैं, है कि नहीं? ऐसे बच्चे आज के समाज में जो माता पिता के कमाए हुए मेहनत के पसीने के धन कमाए हुए दुरुपयोग करते हैं, उड़ाते हैं, है कि नहीं ऐसे बच्चे? दुशासन जैसे पात्र भी है या नहीं आज के समाज के अंदर? शासन में हर क्षेत्र के लिए लिया है। दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनता है, दुर्बुद्धि जिसकी बुद्धि ही दुष्टता वाली है, दुर्विमोचन माना हर इंद्रियों की दुष्टता से भरी हुई, हर इंद्रियों की जिसकी दृष्टि ही बुरी हो, दुर्मुख जिसके मुख से हमेशा बुरे वचन निकलते हो, तो ऐसे बच्चे हैं कि नहीं आज के समाज के अंदर? तो प्रैक्टिकल कैरेक्टर वाइज ऐसे बच्चे हैं, बाकी कौन माँ बाप अपने बच्चों के नाम ऐसे चुन करके रखेंगे? तो यही तो सिद्ध करता है कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है। और लास्ट में एक बहन थी, वो भी दुशीला। शील माना चरित्र, शील माना चरित्र, दुशीला यानी जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। तो आज ऐसी नारियां भी है कि नहीं है? जब टीवी सीरियल चलती है तो आजकल क्या दिखाते हैं टीवी सीरियल में? आप लोग जैसे आकर के हमें बताते तो पता चलता है कि आजकल सीरियलों में घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, नफरत कैसे रखनी चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, यही तो दिखाया जाता है ना? और उसमें नारियों की भूमिका कैसी दिखाई है, घर को तोड़ने वाली। दुशीला नहीं तो कौन है ये? यही तो दुशीलाएं हैं। जब हम बाहर जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं और उस समय कोई विज्ञापन के अंदर नारियों का जो चित्र होता है जिसमें वस्त्र भी पूरे न हो तो ये दुशिलाएं नहीं तो कौन है जो मनुष्य की मनोवृत्ति को खराब करती है। इसलिए कहा कि कैरेक्टर वाइज आज ऐसे संतान है समाज के अंदर, यही 100 कौरव है। तो 100 कौरव और 5 पांडव। उसके बाद गीता का जन्म कहां हुआ? तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल मैं कुरुक्षेत्र गई थी, वहां एक बात मुझे जानने को मिली। मुझे उस स्थान पर ले जाया गया ज्योतिसर, जहां पर युद्ध हुआ था। वो युद्ध का मैदान जब देखा तो इतना छोटा था कि मेरे मन में विचार चलने लगे कि यहाँ अक्षौणी की सेना खड़ी कैसे रही होगी, इतना छोटा है। और जिन्होंने मुझे वहाँ दिखा रहे थे, वो भाई ने एक बात सुनाई, बड़ी आश्चर्य की बात, कि कुरुक्षेत्र पहले बहुत छोटा सा एक गांव था जिसका नाम कुरुक्षेत्र भी नहीं था, उसका नाम स्थानेश्वर था। शिवजी का मंदिर है स्थानेश्वर, उसी नाम से उस गांव को जाना जाता था, क्योंकि वहां पर कहा जाता श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की थी, तो स्थानेश्वर नाम से वो गांव की पहचान थी और थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था। 1974 में एक कलेक्टर वहां पहुंचे और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी हो और उसका नामो निशान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने स्थानेश्वर से नाम चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम रखा और फिर उसको डेवलप करके उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया और आज वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि 1974 के पहले कुरुक्षेत्र का अस्तित्व दुनिया के नक्शे पर नहीं था। कैसी वंडर की बात है कि 1974 में उसको रिकॉग्निशन मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी उसका कोई अस्तित्व न हो दुनिया के मैप पर, कैसे हो सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि मुझे वो स्थान दिखाया गया जहां पर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, वो एक मेमोरियल जैसे बनाया हुआ है कि यहाँ पर लाके रथ को खड़ा किया था और जहां से दोनों सेनाओं को आमने सामने देख करके वो निराश हो गया और उसने शस्त्र छोड़ दिया और तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। और सभी के शंखनाद पहले अध्याय में ही आते हैं कि सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए युद्ध की तैयारी में। तो मैंने उस भाई से पूछा जो मुझे दिखा रहे थे, मैंने उस भाई से पूछा कि युद्ध के मैदान में अर्जुन निराश हो गया, निराश होकर के शस्त्र छोड़ दिए उसने और भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया 18 अध्याय 700 श्लोक। तो मैंने उस भाई से पूछा कितना समय लगा होगा 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में, कितना समय लगा भगवान को? तो कहा 3.5 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे भगवान को 700 श्लोक सुनाने में। तो मैंने उसको पूछा कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या 3.5 घंटे की पेशेंस उसमें थी? उसने कोई रिएक्शन नहीं किया? वो खड़ा रहा वहाँ, देखता रहा, भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं कि वो ज्ञान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको, उसको कुछ पता नहीं है। तो 3.5 घंटे तक उसने कोई रिएक्शन न किया हो, ऐसा हो सकता है? तो जब मैंने पूछा कि दुर्योधन ने 3.5 घंटे तक क्या किया, तो कहा वो बात तो कहीं पर भी लिखी हुई नहीं। तब महसूस हुआ ये तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार जो है, नहीं तो अगर प्रैक्टिकल युद्ध का मैदान हो, आज दुनिया में कोई रास्ते में भी दो व्यक्ति लड़ रहा हो, हाँ, एकदम गुस्से में आके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए और आप एक व्यक्ति को बुलाकर कहो मैं तुझे गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, क्या कहेगा, क्या कहेगा? गाली नहीं देंगे, ये समय है, ये स्थान है, बाद में सुनूंगा गीता का ज्ञान, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो भगवान जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं बताई हो, ऐसा हो सकता? वो भी कहेगा भाई ये समय है गीता का ज्ञान देने का, छोड़ो ये सब बाद में सुनाते थे, अभी क्या है, अभी चलो युद्ध करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और फिर देखा कि बल सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा युद्ध के नाम से। अब अक्षौणी की सेना जो थी किसकी थी? भगवान की थी, श्री कृष्ण की सेना थी, ये तो सभी जानते कि भाई उसने दिया दुर्योधन को। अब जिस राजा ने सारी सेना को खिलाया पिलाया, उनकी परवरिश की हो, भले उसने दे दिया, लेकिन वो सैनिक किसको वफादार रहने चाहिए, अपने मालिक को या दूसरे को? किसको वफादार रहना चाहिए? मालिक को वफादार। तो वो कैसे तैयार हो गए? इसीलिए कहा उनका हृदय विदीर्ण होने लगा था। और उसके बाद अक्षौणी की सेना, तो मैं इंटरनेट पर जाकर के सर्च कर रही थी कि एक अक्षौणी में कितने होते हैं, तो मुझे पता चला कि महाभारत के समय संगठन के लिए पत्ती का इस्तेमाल होता था, पत्ती की इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे, है ना? उस हिसाब से एक पत्ती के अंदर, तो एक अक्षौणी में कितनी पत्ती थी? तो कहा 2187 पत्ती थी, 2187 पत्ती माना एक अक्षौणी। तो इसका मतलब एक अक्षौणी में 2187 रथ थे, 2187 हाथी थे, 10,935 पैदल सैनिक थे और 6,561 घुड़सवार थे एक अक्षौणी में। और वो मैदान तो इतना छोटा सा है, और उसके हिसाब से अगर 18 अक्षौणी देखा जाए तो 18 अक्षौणी में कितने होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18 करो, तो 18 अक्षौणी में 393,660 रथ थे, 393,660 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक माना 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 3 घुड़सवार के हिसाब से 11,80,980 घुड़सवार थे। और यदि हर रथ के ऊपर एक सारथी हो, रथ चलाने वाला, और एक योद्धा हो, तो 2 हो गए। इसी तरह हाथी के ऊपर एक महारथ, हाथी चलाने वाला और एक योद्धा हो, तो 2 हो गए, तो डबल दी अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब 18 अक्षौणी में 7,87,320 रथों पर थे, 7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। और उसका टोटल अगर किया जाए तो 47,23,920 18 अक्षौणी में थे। और वो मैदान अगर देखो तो 47 लाख लोग खड़े होना और इतने हाथी और इतने घोड़े और इतने रथ, शायद हरियाणा भी छोटा पड़े, है ना? हरियाणा भी छोटा पड़े इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता था कि सूर्यास्त होने के बाद सभी अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। तो इसका मतलब 47 लाख लोगों का रहने का बंदोबस्त भी था। तो रहने का बंदोबस्त तो कितना एरिया चाहिए, और इतना ही नहीं लेकिन कहा जाता कि सूर्यास्त के बाद सभी मिलकर के साथ में भोजन करते थे, साथ में भोजन। तो 47 लाख लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे, और ये सारा हिसाब अगर जोड़ दिया जाए तो कुरुक्षेत्र तो इतना छोटा है, हरियाणा भी छोटा पड़े लेकिन शायद उस समय के भारत की पॉपुलेशन इतनी होगी। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा महाभारत की कथा, कुरुक्षेत्र की कथा नहीं कहा, महाभारत की कथा है, कि जहां हर एक भारतवासी आज युद्ध के मैदान में है और युद्ध के मैदान के साथ साथ हर एक संघर्ष कर रहा है, और हर एक के जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उस समय उसको गीता के ज्ञान की ही आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है, अहिंसक युद्ध की बात की गई है। तो सारथी बनता है भगवान, किसके सारथी बना? अर्जुन के सारथी बना। तो वो अर्जुन का सारथी किस तरह से बनता है, अभी दूसरे सेशन में हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा कैसे इस वक्त, क्योंकि जब कहा कि एक परिवार के लिए अगर भगवान अवतरित हो सकता है तो आज तो घर घर की ये कहानी है, तो भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है, आना चाहिए? तो आना चाहिए तो फिर कैसे आएंगे? जिसके लिए सातवें अध्याय में कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं।